चलते हैं अगली चीज पे, और वो क्या है, अल्लाह अज़्ज़वजल की इबादत के लिए फारिग होना, मेक टाइम फॉर वर्शिप। अफसोस की बात है, दुख की भी बात है, हम इबादत के लिए फारिग होने को क्या समझते हैं। लो फिर रिस्क कहां से आएगा? तो रिस्क के असबाब में से एक सबब यह है कि बंदा खुद को अल्लाह ताला की इबादत के लिए फारिग कर दे। अब ये टर्म हो सकता है हमारे कुछ लिसनर्स के लिए नहीं हो कि ये क्या होती है। तो अल्लाह ताला की इबादत के लिए फारिग होने से क्या मुराद है, इसका क्या मफहूम है? तो नोट कीजिएगा कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए फारिग होना क्या होता है, क्योंकि हम तो फारिग ही नहीं होते, नमाज नहीं हमसे पढ़ी जा रही, तो हम कहाँ बाकी काम करेंगे, और हमें तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, और ये और वो, दिस एंड दैट। तो इसके लिए क्या पता चलता है आपको कि अल्लाह की इबादत के लिए फारिग होना, इससे क्या मुराद है? पहली बात यह कि जब अल्लाह ताला की इबादत करें तो इसमें कल्ब भी और कालिब भी दोनों हाजिर हों। जिसको आसान लफ्जों में बोल दूं कि जब आप इबादत करते हैं, मतलब नमाज पढ़ रहे हैं, तो जिस तरह इसमें आपका जिस्म है ना लगा हुआ, खड़े हैं, क्याम किया, फिर रुकू करते हैं, फिर सजदा है, पूरा जिस्म मूवमेंट में हो जाता है ना, इसी तरह इसमें आपका दिल भी हो। और एक रिवायत से भी पता चलता है कि नमाज का सिर्फ वही हिस्सा कबूल है, मा हज़र फीही कल्बुक, जिस वक्त पे तेरा दिल हाजिर हो। बात वाज़े? अब आपके लिए एक चेकलिस्ट बन रही है, क्या मैं अल्लाह ताला की इबादत के लिए फारिग होती हूँ? क्या मैं जब नमाज पढ़ता हूँ तो वाकई वो पूरी फरागत के साथ पढ़ता हूँ कि उसमें भी हिसाब चल रहा होता है, फलां कितने का और वो कितने का, और सब्जी कितने की और दाल कितने की, और डॉलर कितने का और पाउंड कितने का? नहीं, दिल दिमाग को हाजिर करके अल्लाह के लिए खड़े हों। अभी नमाज पढ़ी होगी ना इससे पहले, जो भी, तो सोचिए जरा, दिमाग साथ था, दिल था, और अगर फजर थी तो पता नहीं, कई बच्चे तो आंखें नहीं खोलते। वो एक बच्चा था तो जब फजर का वजू करता था ना, तो पूरी आंखें बंद करके वजू करता था। किसी ने उसको कहा कि भाई ये तुम्हारी आंखों के इर्द गिर्द जगह सूखी रहती है, कहता नहीं फिर मेरी नींद उड़ जाएगी। तो ये तो मासूम बच्चा था, उसकी तो मासूमियत प्यारी है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। दिल दिमाग सब कुछ हाजिर करके जाए नमाज पे खड़ा कर हुआ करें, और नमाज ऐसे पढ़ें जैसे आखिरी नमाज है। तो फिर इबादत में खुशू और खुदू हो, ये मतलब है दूसरा इबादत के लिए फारिग होना। और तीसरी चीज है कि अल्लाह की अजमत और किबरियाई आपके दिल में हो। और चौथी बात लिख लीजिए कि इस बात का इदराक और एहसास हो कि कायनात के मालिक से हम कलाम हो रहा हूं। चूंकि मौजू अहम है, मैं इसको दोहराती हूं उंगलियों पे। अल्लाह की इबादत के लिए फारिग होने का क्या मतलब है? नंबर एक, जब इबादत करे तो दिल और जिस्म दोनों हाजिर हो, दिमाग भी हो। दूसरी बात है इबादत में खुशू और खुदू हो। तीसरी बात, अल्लाह की अजमत और किबरियाई का एहसास दिल में हो। और चौथी बात है कि इस बात का एहसास हो कि मालिक कायनात से हम कलाम हो रहा हूं। देखिए, किसी अफसर के सामने जाना हो तो दिल का क्या हाल है, इमिग्रेशन पे मौजूद शख्स कुछ सवाल पूछ ले तो दिल का क्या हाल होता है, और इसी तरह से अगर ट्रैफिक पुलिस रोक ले, लाइए जी लाइसेंस दिखाएं कागज की तरह, तो हाथ पांव नहीं ठंडे होने लग जाते हैं, उस वक्त क्या महसूस होता है? तो अपने आप को इन चार चीजों के आईने में देखिए, क्या अल्लाह की इबादत करते हुए महसूस करती हूँ? क्या हमारा हाल तो नहीं कि सब याद आते हैं नमाज में, बस रब नहीं याद आता? हाँ, सारी भूली बिसरी बातें कि हमारी इबादत में नहीं याद आती, तो क्या पता चला अल्लाह की इबादत कैसे होती है? नबी सल्लम की चंद बातों को समझ में रखिए। सबसे पहले आपने क्या फरमाया था कि नमाज ऐसे अदा करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अल्लाह ताला की इबादत के लिए आसन तरीका क्या, का अन्नक तराहू, अल्लाह को तुम देख रहे हो, अंताबुद अल्लाह का अन्नक तराहू, ऐसे इबादत करो जैसे तुम उसको देख रहे हो। और अगर ये कैफियत नहीं आती अपने ऊपर, हो सकता है अभी इतना अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत नहीं हुआ, तो फिर अपने एक और ऑप्शन दे दी, फाइलम तकुन तराहू फाइन्नहु यराक। ये सही मुस्लिम किताबुल ईमान की रिवायत है, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। मतलब क्या है, फिर अगर तुम ये ना कर सको तो ये याद रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। तो फिर क्या पता चला कि कम से कम ये एहसास तो हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और मोहसिनीन की नमाज क्या है, कि मैं अल्लाह ताला को देख रहा हूं। उन लोगों में ना हो कि जिनके जिस्म तो मस्जिद में है लेकिन दिल बाहर की चीजों में लटके और अटके हुए हैं। और मुल्ला अली कारी एक बहुत बड़े आलिम है, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ये लफ्ज़ के तफरुख लिए इबादत आती, इबादत के लिए फारिग हो जाओ, इससे मुराद क्या है? अपने रब की इबादत की गरज से अपने दिल को फारिग करने में मुबालगा करो। मसलन मैं अपने लफ्जों में बता देती हूँ, फिक्र लग जाए नमाज आने वाली है, घर में बच्चों को, बेगम को, हस्बैंड को, जो भी, जल्दी कीजिए, नमाज का वक्त है। यानी दिल को फारिग करने में ये पांचवा पॉइंट आप लिखना चाहें अपने लिए अलग लिख लीजिए, जो पीछे चार बोले थे उसमें, कि वक्त से पहले तैयारी शुरू कर दे नमाज की। हमारी क्या हालत होती है, जमात से भी जाके पढ़नी है ना, तो पहली दो रखते तो गई, और आखिरी वक्त में चाबी नहीं मिल रही, गाड़ी किधर है, बच्चे नहीं निकल रहे, जल्दी कर, एक हंगामा बरपा। नहीं, तफर रख ली बात आती, वक्त से पहले तैयार हूं, कोई नमाज अचानक तो नहीं आ गई आपके मेरे पास, तो वक्त से पहले तैयार रहिए। तो अभी तक हमने जो मफहूम समझा वो क्या है कि अल्लाह की इबादत के लिए फारिग होने से क्या मुराद है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगली बात जो हमारे इस मौजू से मुतल्लिक है कि अल्लाह की इबादत के लिए फारिग होने वालों को रिस्क मिलता है। चंद जुमले पहले बोलने दीजिए, फिर आपको एक बड़ी खूबसूरत हदीस सुनाती हूँ। हम कहते हैं नमाज का वक्त ही नहीं मिलता दुकान पे जाने के बाद, मेरे ऑफिस में मैं इतना बिजी होता हूँ कि मुझे नमाज तो छोड़िए जुमे की भी होश नहीं होती, आमतौर पे तो हम ये कहते हैं। और ऐसे एम्प्लॉय को शायद ही कोई रखना पसंद करे जो ये शर्त रख दे कि मेरे जॉब आवर्स के दौरान जितनी भी नमाजें आएंगी, ना सिर्फ ये कि वो नमाज पढ़ूंगा बल्कि मस्जिद में जाके पढ़ूंगा, बल्कि 15 मिनट पहले से निकल जाऊंगा और नमाज के 15 मिनट के बाद आऊंगा। मेरा नहीं ख्याल कि लोग ऐसे एम्प्लॉय को रखें। वो ये मौलवी साहब, ये मुल्ला साहब, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी गलत बातें लोग बोल देते हैं, इसलिए मैंने भी बोल दी, इनको तो नमाजें ही पढ़नी, ये मस्जिद में अच्छे लगते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इनकी मदद कर दो। वल्लाही वल्लाही अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हें तुम्हारे कमजोरों और ज़ईफ़ों की वजह से रिस्क दिया जाता है, शायद आपकी पूरी फर्म में, आपकी पूरी दुकान में और आपके पूरे सेटअप में जो आपने ऑफिसेस का रखा हुआ है, सिर्फ इस एक पांच नहीं तो तीन नमाजें भी अगर वो आपके पास पढ़ता है उसकी वजह से आपको रिस्क मिले। आज आप उसको निकालिए इसलिए कि ये मुल्ला साहब तो नमाजें पढ़ते रहते हैं, इनको क्या करना है। उधर देखिएगा आप उसको, शायद तनख्वाह में मिसाल है कि आप 1,000 पाउंड देते हैं ना, तो हो सकता है उस महीने की सेल में 1500 की कमी हो जाए। इस पर यकीन कीजिए, ये गैब के मामले हैं। तो कभी ना सोचिए कि नमाजें पढ़ने वाले क्या कमाएंगे, ये तो हर जगह रोक लो, जो अब ये क्या टैक्सी चलाएंगे हर वक्त, तो ये मस्जिद में खड़े हैं, नहीं। अल्लाह के नबी सल्लम की बड़ी खूबसूरत रिवायत सुनिएगा कि कैसे आप इस चीज को हमारे सामने लाते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए फारिग होने वाले को अल्लाह रिस्क देते हैं। बहुत सारे हवाले हैं इस हदीस के, मुस्नद अहमद, तिर्मिजी, इब्ने माजा, हाकिम, और रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और याद रखिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन अल्लाह ताला यकूलू, अल्लाह ताला फरमाता है। इमेजिन भी किया करें, इंजॉय भी किया करें इन बातों को। यबना आदम, ए आदम के बेटे, तफर्रख लिए इबादती, मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर ले। क्यों? अमला सदरका गिनन, मैं तेरे सीने को तवंगुरी से भर दूंगा, यानी तू अपने आप को बड़ा अमीर महसूस करेगा। गनी कहते हैं वेल्दी को, रिच, रईस, सेठ साहब, यानी तेरे सीने में बहुत दौलत भर दूंगा। वह असुद्ध फकर का, और तेरी गुरबत को पीछे कर दूंगा, फकर तेरा दूर कर दूंगा, लोगों से कहले बेदयास कर दूंगा। वह इला तफल मला तू यद का शोगलन व लम असुद्ध फकर का। पूरी रिवायत इकट्ठी सुनिए, ए आदम के बेटे, अंदाज देखिए कितना प्यारा है, मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग करो, मैं तेरे सीने को तवंगुरी से भर दूंगा और लोगों से तुझे बेनियाज कर दूंगा, और अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तेरे हाथ बेकार कामों में उलझा दूंगा, अल्लाह अकबर, और लोगों की तरफ तेरी मुख्ताजी को खत्म नहीं करूंगा, यानी लोग हमेशा तुझसे शिकवे ही करते रहेंगे, बेगम हमेशा मांगती रहेगी, बच्चे कहेंगे अबू पैसे नहीं देते, अबू जरूरतें नहीं पूरी करते, क्योंकि तू तो बेकार कामों में पड़ा। आज के बेकार काम तो हमारे हाथों में होते हैं, खबरें सुनने और सिर्फ इधर उधर चिट चैट में हम कितना वक्त निकालते हैं जिसमें हम 10-12 पढ़ सकते हैं। तो इस हदीस में अल्लाह के नबी ने उम्मत को क्या खबर दी कि पूरी तवज्जो और देहान से अल्लाह की इबादत करने वाले के लिए अल्लाह ताला की तरफ से दो इनाम मिलते हैं। पहला क्या कि दिल गनी हो जाता है, और दूसरा यह कि लोगों से बेनियाज हो जाता है। और इबादत से मुंह मोड़ने वाले, तवज्जो और ध्यान ना देने वाले अपनी इबादत को, नमाजों को और जिक्र अज़कार को, इसको दो सजाएं मिलती हैं। पहली सजा क्या है कि अल्लाह उसको बेकार कामों में उलझा देते हैं, सोचिए, अपने ऊपर लीजिए, देखिए हम तो अपने लिए सीख रहे हैं ना। क्या मैं बेकार कामों में तो नहीं उलझी रहती? मेरे घर के काम क्यों नहीं खत्म होते? मेरी दुकान पे क्यों नहीं बरकत? और मेरे ऑफिस में हर वक्त क्योस क्यों होता है? शायद ये एक सजा हो आपको। और दूसरी बात है कि वो लोगों से उसकी मोहताजी को खत्म नहीं करेंगे, यानी हमेशा दूसरों के आगे हाथ फैलाएगा, दस्ते नगर होगा, लोगों के आगे मोहताज होगा। और आप देखिए कि इमाम हाकिम ने एक रिवायत पेश की है जो माकल बिन यसार से, उसमें लफ्ज थोड़े से मुख्तलिफ हैं, कि जिसमें सिर्फ अगर तर्जमे पे भी गौर कर लें, और ये भी बुखारी मुस्लिम दोनों में रिवायत है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आदम के बेटे मेरी इबादत के लिए फारिग हो जाओ, मैं तेरे दिल को तवंगुरी से भर दूंगा और तेरे दोनों हाथों को रिस्क से पुर कर दूंगा। ए आदम के बेटे, मुझसे दूरी इख्तियार न कर। नोट कीजिएगा इस मोहब्बत को, अगर तूने ऐसे किया तो मैं तेरे दिल को मुहताजी से भर दूंगा और तेरे दोनों हाथों को बेकार कामों में लगा दूंगा। तो खुलासा कीजिए सारी बात का, अभी तक अल्लाह के नबी ने क्या बताया? नंबर एक, मुकम्मल तवज्जो से और दिल जमई से इबादत करने वालों को अल्लाह ताला ये सब इनामात अता करता है। दिल गनी रहता है हर वक्त, ये नहीं लगता हाय कारोबार डूब रहा है, हाय बच्चे कहां से खाएंगे, किराया कहां से आएगा घर का, बच्चों की फीसें कहां से दें, देखी जाएगी। तवंगुरी के साथ दिल को भर देना। और दूसरी बात है, रिस्क के साथ इसके दोनों हाथ भरे होंगे, पता ही नहीं कहां से आ रहा है। और याद रखिए कि अल्लाह अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अल्लाह खुद फरमाता कि इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, सूरत आले इमरान में है कि अल्लाह वादों के खिलाफ नहीं करता, आयत नंबर 9 है। तो अल्लाह ने सारे रास्ते बता दिए। और अगर आप अल्लाह से दूर हैं, आप नमाज नहीं पढ़ते इसलिए कि कारोबार कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं और आप ये कुछ कर रहे हैं, तो फिर याद रखिए दिल मोहताज रहेगा और फकीरी होगी और बेकार काम दिल में होंगे। और सबसे बड़ी दौलत दिल की दौलत है, लैसल गिनाउ बिल माल, दौलत माल के बहुत होने का नाम नहीं है बल्कि गिनाउल कल्ब है। तो जब अल्लाह ताला आपको ये कहते हैं तो फिर आपको मुझे इसमें क्या सोचना है। और यहां मैं एक छोटी सी बात आज के हालात से जोड़ के अब आपको अगली चीज पे ले जाना चाहती हूँ, और वो क्या है कि आज कल जितने फारिग हैं हम शायद ही कभी होंगे। हर सुनने वाला खुद से चंद सवाल करे, और ये जेम्स है हमारे। नंबर एक, मैंने आज तक कुरान पाक हिफ्ज क्यों नहीं किया? इसी के अंडर ले लीजिए कि मेरा कुरान आज तक ठीक नहीं। दूसरी बात है, क्या मुझे पूरी नमाज का तर्जुमा आता है? क्या मुझे पूरे कुरान का तर्जुमा आता है? जब मैं कुरान नमाज में या उसके अलावा पढ़ता हूं तो क्या मुझे समझ आता है? अगर ये सारी बातों का जवाब नो या बस बीच बीच की बात है, कुछ आता है कुछ नहीं, तो फिर सवाल कीजिए कि आखिर कब? वक्त नहीं मिला ना आज तक जिंदगी में, तो आज मिल गया। शायद आपकी जिंदगी का ये पहला लॉकडाउन था जिसने आपको मुझे लॉकडाउन किया कि अपनी कमियों को पूरा करो। अगर इन दिनों में आप और मैं अपनी करेक्टर बिल्डिंग और अपनी इल्मी और अपनी इखलाकी कमियों को पूरा नहीं करेंगे, तो लिख के रख दीजिए कि फिर आप कभी नहीं बदलेंगे। आपने फैसला कर लिया है कि नंबर एक, आपने कुरान हिफ्ज नहीं करना, सॉरी टू से दैट, पूरा छोड़ दीजिए। कुछ तो आयते, कोई नई नमाज तो पढ़िए। क्या कुल्लू अल्लाह के साथ सारी उम्र जिंदगी में नमाजें पढ़ दी? छोटी छोटी सूरतें याद कीजिए कि अल्लाह हर दिन एक नई सूरत याद करूं ताकि मेरी नमाज अच्छी हो। क्या आप रोज भिंडियां खा सकते हैं? भिंडी छोड़िए, आप रोज बिरयानी नहीं खा सकते? दिल भर जाता है, पसंदीदा से पसंदीदा चीज आपको दूसरी तीसरी दफा खानी पड़े, आपको भोज लगती है। तो नमाज इसलिए भोज है आज कि एक ही सूरत एक ही कुछ, फिर आप मान लें कि आपने नहीं करनी याद, बस सॉरी। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनु अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, सूरत हदीद की आयत है कि क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि दिल अल्लाह की खशियत से भर जाए? तो इस लॉकडाउन को नेमत बनाइए। और इसी तरह बाकी चीजों पे खुद को सोच लीजिए कि अगर आज कल भी आप कुरान नहीं पढ़ रहे, आज कल भी आपने कुरान का तर्जमा नहीं याद करना और आज कल भी आपने कुरान के दौर नहीं करने, फिर आप नहीं करेंगे, फिर छोड़ दीजिए उसको, अपनी लिस्ट में से डिलीट कर दीजिए कि मैंने ये कुछ करना है। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। सारी मखलूक का रज़ाक है जिसके हाथों को रिस्क से भर दे, वो गुर्बत और इफलास का शिकार कैसे हो सकता है? और दिलों को पैदा करने वाला, दिलों का पैदा करने और खजानों का मालिक अल्लाह, जिसके दिल को दौलत से भर दे, तो बताइए कभी उसके करीब भी मोहताजी का एहसास आ सकता है? वो कभी किसी के आगे हाथ फैला सकता है? देखिए, आपकी जेब में हो $100, तो क्या आप किसी से $2 मांगेंगे? नहीं मांगेंगे, आपको गैरत आएगी, शर्म आएगी आपको। تو پھر بندہ بندوں سے کیوں مانگے؟ اور جس کے دل کو کائنات کے مالک، تنہا یونیک منفرد مالک کہ لا الہ الا اللہ، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی تو مثال جیسا بھی کوئی نہیں ہے. اگر اللہ کسی کو اپنا ساتھ دے دے، اپنی مدد کی امید دلا دے، تو مجھے بتائیے کون ہے جو اس کو پھر اسودہ حال کرے؟ اور اگر اللہ کسی کو بیکار اور لا یعنی چیزوں میں ڈال دے تو پھر کون نکالے گا؟ تو اختنم خمسن قبل خمس، پانچ چیزوں سے پانچ چیزوں کو غنیمت جانی ہے. اس میں زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، غربت سے پہلے دولت کو. سب سے بڑی دولت جو ہمارے پاس ہے نا وقت کی، اس کو تو ہم وقت سمجھتے ہی کوئی نہیں ہے. تو ایک دعا کر لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے، آخری تشہد میں بھی اور نماز کے بعد کے اذکار میں بھی یہ دعا آتی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی بہترین عبادت پر. یہ ابو داؤد کی روایت ہے 1522 اور نسائی 1302. یہاں آپ نے غور کرنا حسن عبادت پہ. اے اللہ مجھے اپنی عبادت کو حسین بنانے کی توفیق دے، خوبصورت بناؤں اپنی عبادت کو. ٹوٹی پوٹی یہ کہ مردہ نمازیں ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ابھی تک ہم نے کتنی کنجیاں کر لی، میں دہرانا چاہوں گی تاکہ اس سیریز کے پورا ہونے سے پہلے آپ کو اور مجھے یاد ہو جائے. سب سے پہلے ہم نے استغفار اور توبہ سیکھا تاکہ پچھلے گناہوں کو معاف کروا لیں. پھر تقوی پہ بات ہوئی تاکہ آئندہ گناہوں سے بچنے پہ ہم کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما دیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے توکل پہ بات کی، اور پھر ہم نے بات کی اس پہ کہ اللہ کی عبادت کے لیے خود کو خالص کرنا.